ओम शांति। मन वशीकरण मंत्र, मन मना भाव, हमारे जो प्यारे सद्गुरु हैं शिव बाबा, उस सद्गुरु ने हमारी सद्गति हो उसके लिए ये मन वशीकरण मंत्र हमें दिया है। मन वशीकरण मंत्र अर्थात मन को वश करने वाला मंत्र, मन को वश करना अर्थात मन को जीतना, मन पर पूर्णतया नियंत्रण और अनुशासन करना। कहते हैं मन जीते जगत जीत, जो मन को जीतता है वो जगत जीत बनता है, जो मन को जीतता है वो स्वराज अधिकारी बनता है, और जो स्वराज अधिकारी बनता है अर्थात जो स्वयं का राजा बनता है वो विश्वराज अधिकारी अर्थात अन्य आत्माओं का भी राजा बनता है। तो मन वशीकरण मंत्र है मन मना भव। मन मना भव अर्थात मन को मनाना, परमात्मा की याद में मन को लगाना, मन को रिझाना, मन को रमन करना, उसको कहते हैं मन मना भव। तो इस मंत्र के जाप से हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जाती है, और दूसरा इस मंत्र के जाप से हरेक सेकंड में हमें अनेक पद्मों की कमाई भी होती रहती है। इतनी कमाई कराने वाला और कोई मंत्र नहीं है, इसलिए हर पल हर घड़ी हमारा मन इस महामंत्र का जाप करता रहें, उसके लिए हमें कुछ एक बातों को समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, मन किसको कहते हैं, मन कौन सी शक्ति है, मन कहां है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म शक्ति है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जब तक उसको जानते नहीं हैं, तब तक उसका प्रयोग करना सरल नहीं होता है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं जिससे आपको स्पष्ट होगा कि मन ये सूक्ष्म शक्ति है। मैं प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने मधुबन में शांति स्तंभ देखा है? प्रश्न पूछते ही शांति स्तंभ आपके सामने आ जाता है, उसको आप देखना शुरू करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछता हूं, शांति स्तंभ कैसा है, क्यों बनाया गया है, फिर आप सोच सोच के मुझे जवाब देने लगेंगे कि शांति स्तंभ ब्रह्मा बाबा के श्रेष्ठ स्थिति की यादगार हैं। शांति स्तंभ में ये बातें दर्शाई हैं। तो देखने वाली शक्ति बुद्धि है और उस पर जो मुझे आप सोच सोच कर बातें बता रहे हैं वो आपका मन है। तो देखने वाली शक्ति बुद्धि है और उस पर सोचने वाली शक्ति मन है। तो एकांत में बैठकर इन दोनों शक्तियों में जो सूक्ष्म अंतर है उसको परखना बहुत जरूरी है। ये मेरा मन है जो इस बात पर सोच रहा है। अभी मन आपका हमेशा मन मनाभ होकर जाप करता रहे उसके लिए मन को अच्छी तरह से जानना भी जरूरी है। मन की कौन सी विशेषताएं हैं जिनको जानकर मुझे इस मंत्र का जाप करना और सरल हो जाएगा, उसके बारे में 5 बातें आपको जाननी हैं। पहली बात, मेरा मन जो है मेरा मित्र है। मित्र को अच्छी तरह से समझाया जाता है, उसके साथ प्यार से बात करते हैं, मित्र का हाल चाल लेते हैं, मित्र को सहयोग देते हैं, मित्र से सहयोग लेते हैं। तो मित्र को हमेशा हल्का भी रखते हैं। तो मन को सदा हल्का रखना है, उसका हाल चाल लेते रहना है, मन को सदा खुश रखें। अगर मन को खुश रखेंगे तो मन आपको बहुत अच्छी तरह से मदद करता रहेगा और मन मना भव का मंत्र का जाप बहुत सुगमता से चलता रहेगा। तो मन को सदा शांत और शीतल और हल्का रखना सीखे। ऐसा मन ही मन मना भव का मंत्र का अजापा जाप करता रहता है, कभी भी वो थकता नहीं है। थोड़ा भी मन अशांत होता है जाप करना छोड़ देता है, थोड़ा भी बोझिल होता है जाप करना छोड़ देता है। तो हमेशा मन को शांत और शीतल और हल्का रखना सीखे। बिजी रखे मन को लेकिन सदा इजी भी रखना सीखें। मित्र को हमेशा हम इजी रखने के लिए मदद करते हैं। दूसरी बात, मन का मैं मालिक हूं। मालिक मैं आत्मा हूं, मेरी ऑर्डर मन ने माननी चाहिए। बाबा के पास आने के पहले हम ये बात नहीं जानते थे कि आत्मा मालिक है और मन उसका कर्मचारी है या फॉलोअर है। इसलिए मन मानी करता था, जहां चाहे आत्मा को घसीटता था। लेकिन जैसे हमें स्मृति मिल गई है, मन मेरा कर्मचारी है, मैं आत्मा मालिक हूं, तो जैसा मैं चाहूंगा वैसे मन को मानना होगा। तो मन हमारे इशारे पर काम करने लगता है, परिणाम स्वरूप हम स्वराज अधिकारी बनते जाते हैं। मन पर पूर्णतया नियंत्रण और अनुशासन प्राप्त करते रहते हैं। तीसरी बात है, मन बच्चे के समान है। आत्मा रूपी मां के ये दो बच्चे हैं, मन और बुद्धि। इन दोनों बच्चों का हमें बहुत ध्यान रखना है। जैसे मां अपने बच्चों का ध्यान रखती है और उनको ट्रेनिंग देती है, बेटा ये आग है, इसको स्पर्श नहीं करना, हाथ जल जाएगा, यहां खड्डा है, इधर नहीं जाना, नहीं तो खड्डे में गिर जाओगे। ऐसे हमें बच्चे को, मन को समझाना है कि हे मन, माया के साथ रहोगे तो मैला बन जाओगे, माया के संग में नहीं रहना है। और हमेशा जीन की तरह याद की सीढ़ी चढ़ते रहना है, चढ़ना है उतरना है, चढ़ना है उतरना है। जब कर्म करना है तो नीचे आओ, नहीं तो सीढ़ी याद की चढ़ते रहो। इसमें तुम्हारा कल्याण है, इससे तुम्हें लाभ होगा। चौथी बात है, मन मेरा घोड़े के समान है। घोड़े पर जब सवारी बैठता है, उसकी लगाम अगर हमारे अच्छी तरह से हाथ में होती है, तो वो घोड़ा हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचा देता है, मंजिल पर पहुंचा देता है। जैसी लगाम छूट जाती है, वो हमें खड्डे में फेंक देता है। तैसे मन रूपी घोड़े की लगाम है बुद्धि, तो बुद्धि रूपी लगाम को अटेंशन रूपी मुट्ठी से पकड़ना है। और उसको जब हम पक्का पकड़ते हैं, तो मन हमें अपने मंजिल पर ले जाता है। अर्थात जो हम मन को काम देते हैं, मंत्र का जाप करते रहने का, वो जाप करता रहता है। जैसे ये अटेंशन की मुट्ठी छूट जाती है या ढीली हो जाती है, तो मन हमें फेंक देता है, काम करना छोड़ देता है, खाई में फेंक देता है। इसलिए मन रूपी घोड़े को बहुत हमें अपने कंट्रोल में रखना सीखना है। पांचवी बात, मन मेरी रचना है। मैं आत्मा मन का रचता हूं। रचना हमेशा रचता के कंट्रोल में रहती है। इसलिए मैं आत्मा कमांडर हूं। जो मैं ऑर्डर अपने मन को रचना को दूं, उस ऑर्डर को उसको मानना चाहिए। अगर मैं ऑर्डर करता हूं बाबा के बारे में सोचने के लिए और वो नहीं सोचता है, इसका मतलब मेरे पास कमांडिंग पावर नहीं है, मैं अच्छा कमांडर नहीं हूं। इसलिए मन को जो भी हम ऑर्डर दें, मन हमें सल्यूट मारे ओके बॉस, और मन हमारी आज्ञा का पालन करता रहे। तो इस महामंत्र का जाप हम बहुत अच्छी तरह से करते रहते हैं। अभी इस मंत्र का जाप कैसे करें, इस विधि को जानना जरूरी है। करना तो चाहते हैं, विधि बड़ी सरल है। एकांत में बैठकर स्वयं को आत्मा अनुभव करना है और बुद्धि रूपी नेत्र से परम धाम में शिव बाबा को देखना है या सूक्ष्म वतन में बाबा को देखना है। तो जितना समय तक बुद्धि रूपी नेत्र बाबा को देखता है, उतना समय तक मन बाबा के बारे में ही सोचता रहता है, जाप करता रहता है, बाबा के गुणों के बारे में, शक्तियों के बारे में, विशेषताओं के बारे में, ज्ञान के बारे में ऑटोमेटिक सोचता रहता है। लेकिन अगर बुद्धि वहां से हट जाती है तो मन भी उसके पीछे भागने लगता है, जाप करना छोड़ देता है। ऐसे परिस्थिति में हमें चेक करना है, मन बुद्धि मेरी कहां भटक गई है, बाबा से वो कहां भाग गई है। चेक करना है कहीं व्यक्ति या वैभव पर टिकी हुई है तो चेक करते रहना है और उसको चेंज करते रहना है, अर्थात बाबा पर उसको बिठाना है। जितनी चेकिंग पावर और चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी एकाग्रता की शक्ति इस जाप को करने की हमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए बुद्धि पर बिना पैसे वाला वॉचमैन को ड्यूटी देना है, हे वॉचमैन, मेरी बुद्धि पर पूरा अटेंशन रखना है। अगर मेरी बुद्धि मेरे लक्ष्य से बाबा से हट जाए, पुनः उसको बाबा पर बिठाना है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तो लंबे समय तक मन मना भाव का जाप करता रहेगा, आत्मा खुशी में झूमती रहेगी। जाप करना अर्थात बाबा के पास सदा बैठे रहना। आप देखेंगे जो सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, शक्तियों का सागर है, उसके पास जब हमारा मन बाबा के पास बैठ जाता है तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमें होने लगती है। इसलिए हमें बाबा के पास बैठे रहना है, डटे रहना है। कोई दुनिया की शक्ति वहां से हमें हटाए नहीं, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। भक्ति मार्ग में ध्रुव के तारे की यादगार हैं। ध्रुव जो बाढ़ था, बच्चा था, वो विष्णु भगवान की आराधना करता था। जब विष्णु भगवान उसको प्रसन्न हुए तो विष्णु जी कहने लगे, क्या आपको वरदान चाहिए बताओ। तो ध्रुव ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा स्थान एक दीजिए जहां से दुनिया की कोई शक्ति मुझे हटाए नहीं। तो विष्णु जी ने कहा तथास्तु। तो इसलिए ध्रुव का तारा आसमान में एक स्थान पर चमकता रहता है, टिमटिमाता रहता है। तो ये कोई जड़ तारे की यादगार नहीं है, हम चैतन्य सितारों की वो यादगार हैं। हम द्वापर युग से बाबा की आराधना भक्ति करते रहे, संगम युग में बाबा प्रसन्न हो गए। तो बाबा कहने लगे, बच्चे क्या चाहते हो आप मेरे से? बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे केवल परम धाम में आपके बाजू में एक ऐसा स्थान दीजिए ताकि दुनिया की कोई भी मायावी शक्ति मुझे हटाए नहीं। बाबा कहते तथास्तु। तो हमें परम धाम में बाबा के पास बैठते रहना है, हर पल हर घड़ी को सफल करते रहना है। घड़ी का काटा टिक 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 करता है तो हमें पूछता है, ठीक हो? ठीक 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 हो? हाँ हम ठीक है। फिर ठीक कैसे होंगे? तो हर एक सेकंड कहता है, भगवान के साथ सेखन करते रहो। बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में देते रहो। तो बाबा से सेखन करते रहेंगे तो हर एक सेकंड सफल होता जाएगा। सफल मेरा सेकंड हो रहा है या नहीं कैसे पता चलेगा? सफल, अच्छा फल मिल रहा है, अच्छे फल की प्राप्ति हो रही है, बाबा से अथाह शक्तियां मुझे मिल रही हैं, माना मेरा समय सफल हो रहा है। अभी इस मंत्र को जाप करने में कौन से बाधाएं आती हैं? अर्थात मन को भटकाने वाली कौन सी बातें हैं, इसको जानना जरूरी है। सबसे पहली बात है, हमारे मन को इस पुरानी दुनिया की तरफ माया आकर्षित करने का बहुत प्रयास करती है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो न चाहते हुए इस पुरानी दुनिया के वैभव, चकाचौंध हमारे मन को अपने तरफ आकर्षित करती है। इसलिए हमेशा याद रखें, जितना इस पुरानी दुनिया से वैराग्य उतना परमात्मा से अनुराग बढ़ता जाता है। जब तक इस पुरानी दुनिया से वैराग्य नहीं होता है तब तक परमात्मा से अनुराग नहीं बढ़ता जाता है। तो इसलिए इस पुरानी दुनिया में रहना है तन से, लेकिन मन से यहां से हमें किनारा करते रहना है। इस पुरानी दुनिया में क्या रखा है। हमने 5000 वर्ष यहां पाड़ बजाया है, ये पुरानी दुनिया खोखला बन चुकी है। जो भी यहां के वैभव है ये अल्पकालीन है, विनाशी है। इनके पीछे क्या मन को भटकाना, क्या मन को लगाना, क्योंकि साधकों को उच्च कोटि की साधना करने के लिए मन में वैराग्य की लहर जागृत करना बहुत जरूरी है। भक्ति मार्ग में हम जाप करते थे मंत्र का, लेकिन कैसे करते थे? मुख भगवान का नाम बोल रहा है और मन दुनिया में डोल रहा है। मुख तो भगवान का नाम ले रहा है लेकिन मन सारी दुनिया में डोल रहा है। तो हमें अभी दुनिया से ही न्यारा रहना है। मुझे यहां कोई भी इच्छा नहीं है, मेरा यहां कुछ भी नहीं है, ऐसा अंतर आत्मा से आवाज आए, मेरा यहां कुछ भी नहीं है, मैं रिटर्न जर्नी पर हूं, मुझे यहां से जाना है, तो मन ऑटोमेटिक किनारा होता जाएगा, यहां से हटता जाएगा और बाबा से जुटता जाएगा। इसलिए कहते हैं जितना इस दुनिया से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। बाबा को ही संसार अनुभव करें, इस संसार में रहते हुए बाबा को ही अपना संसार अनुभव करें। उसके लिए पद्म आसन करते रहें, कमल पुष्प समान अपने को अनुभव करते रहें। तन से यहां हम काम कर रहे हैं लेकिन मन से यहां से न्यारे अनुभव कर रहे हैं, तभी मन मनाभाव का जाप चलता रहेगा। दूसरी बात, मन को भटकाने वाली दूसरी बात है, बोलो कौन सी बात है? हाँ जी, हमारा अपने तन से बेहद लगाव है। 24 घंटे हमारे साथ कोई रहता है भाई? बोलो, कोई नहीं रहता है। कितना भी नजदीक का संबंधी होगा 2-4 घंटे के लिए रहेगा, लेकिन आत्मा के साथ 24 घंटे हमारा देह ही रहता है। इसलिए हमारा अपने देह से बहुत लगाव हो चुका है। कितना समय हम अपने देह के पीछे सजने सवारने को लगाते हैं, कितना देह के साथ हमारा अटैचमेंट है। सबसे जास्ती प्यार हमारा किससे होता है? हाँ जी, अपने देह से। तो बॉडी ने हमें कौड़ी तुल्य बनाया है। अब बॉडी की कंपनी चाहिए या गॉड की कंपनी चाहिए, आपको चॉइस है। बॉडी की कंपनी में रहते रहते तो हम नीचे गिरते आए, और गॉड की कंपनी में रहने से हम चढ़ती कला की अनुभूति करते रहेंगे। इसलिए गुप्त ही गुप्त हमें अभ्यास करना है इस देह से न्यारा रहने का। जितना इस देह से न्यारा उतना ही बाबा का प्यारा। ये परसेंटेज है, जितना उतना। 100% में से 50% अपने देह से न्यारा हैं, तो 50% ही आपको गॉड की कंपनी अनुभव होगी। इसलिए पूर्णतया देही अभिमानी हमें बनना है, संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना है, तो संपूर्ण परमात्म अभिमानी अनुभव करते जाएंगे। इसलिए इस वस्त्र को भुलाते रहना है, इस वस्त्र को देह के वाहन को गलाते रहना है। दूसरी बात, हमारा अपने देह के साथ बेहद लगाव होता है और दूसरों के देह के तरफ भी सूक्ष्म आकर्षण होता है। ये हमारा 63 जन्मों का कड़ा संस्कार है, आकर्षित करना और आकर्षित होना। हमें किसी के देह के तरफ आकर्षित नहीं होना है। देह है क्या? 5 तत्वों का पुतला है। 5 तत्व भी ये पतित तत्वों से बना हुआ पुतला है। तो आत्मा को देखने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। बाबा ने कहा है, स्वयं को आत्मा समझकर दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखना ये पुण्य का काम है। कोई भी सामने आता है उसको आत्मिक रूप से या फरिश्ता स्वरूप में देखने से पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको मिलते हैं, उससे उसको सुकून मिलता है, तो ये पुण्य का काम है। तो इसलिए हमें आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ाते जाना है, सत्यता की शक्ति को बढ़ाना है। देह में रहना और देह देखना ये असत्यता है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये कहावत प्रसिद्ध है। तो हम कई बार कहते हैं, कोई पूछता है कितने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, हम बड़े नशे से कहते हैं 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से। बहुत अच्छी बात है, ये भाग्य की निशानी है। जितने पुराने बाबा के बच्चे उतने भाग्यशाली बच्चे कहलाते हैं। लेकिन पुरानों की निशानी क्या है? जितने पुराने बाबा के बच्चे होते हैं उतनी दिव्यता की शक्ति, अर्थात दिव्य स्वरूप में टिकने की और दिव्य स्वरूप को देखने की, दिव्यता की शक्ति बढ़ना, रूहानियत की शक्ति बढ़ना, स्वयं को रूह समझकर दूसरों को भी रूह के रूप में देखना, ये शक्ति बढ़ना, ये पुराने बाबा के बच्चों की निशानी है। नहीं तो पुराने होने का कोई फायदा हमने नहीं उठाया, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए शिव बाबा से हमारा बहुत प्यार है, सबका है, है ना? सब तो यहां बैठे हैं। लेकिन प्यार की निशानी क्या है? निराकारी स्थिति में स्थित रहकर निराकारी दृष्टि से देखना, ये बाबा से प्यार है, इसकी वो निशानी है। तो इसलिए हमें बाबा को फॉलो करते रहना है और दूसरों के देह के तरफ हमें आकर्षित नहीं होना है। किसी आत्मा की विशेषता के तरफ भी आकर्षित नहीं होना है, देह के तरफ भी नहीं और आत्मा की विशेषता की तरफ भी नहीं आकर्षित होना है। क्योंकि हम कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा? किसी भी आत्मा को कोई विशेषता मिलती है वो भी तो उसी ने दी है, उस रचयिता ने, उस क्रिएटर ने ही दी है। तो वो ये रचना इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा, तो ऑटोमेटिक उसके तरफ हमारी बुद्धि जाती है, मन बाबा के तरफ जाता है। दूसरी बात है, मन मना भाव का मंत्र का जाप करने के लिए कोई भी संबंध बंधन बनकर हमें खींचे नहीं, क्योंकि हमारा कई आत्माओं के साथ कई जन्मों का हिसाब किताब है। न चाहते हुए हमारा मन किसी भी संबंध के पीछे भागता रहता है। तो हमें ये अनुभव करना है, हमें ये रियलाइज करना है, कोई संबंध अगर हमें खींचता है कोई बात नहीं, उसको रियलाइज करना है और उसको परिवर्तन करना है। बहुत सुंदर बाबा ने चांस दिया है। बाबा कहते हैं मेरे साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहो। ये चांस केवल संगम युग में ही हमें होता है प्राप्त। इसलिए संगम अर्थात परमात्मा के संग में रहना, परमात्मा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहना। आत्माओं के साथ तो सर्व संबंध हमने अनुभव किए हैं और सतयुग से करते ही रहेंगे, लेकिन ये जो संगम है ये केवल परमात्मा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करने का गोल्डन चांस हमें बाबा ने दिया है। इस संसार में दो ही चीजें हैं, ईश्वर और नश्वर। नश्वर अर्थात व्यक्ति वैभव, ये विनाशी चीजें। तो हमें नश्वर से बुद्धि नहीं लगानी है, लेकिन ईश्वर के साथ बुद्धि लगानी है, मन को ईश्वर के साथ जोड़ना है। तो बहुत अच्छी तरह से संबंधों से जो बंधन मन के अनुभव हो रहे हैं उससे किनारा करते रहना है। हमें अभी आजादी चाहिए, आजाद पंछी हमेशा उड़ती कला में उड़ता रहता है। बाबा की पहाड़ी पर आप जाकर बैठेंगे और कोई पंछी ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देगा तो आपके मन में संकल्प आएगा, काश मैं भी इस पंछी की तरह उड़ने का आनंद लेता। तो बाबा ने तीनों लोगों में उड़ने का आनंद लेने का चांस दिया है। तो मुझे पिंजड़े का पंछी नहीं बनना है, मुझे आजादी चाहिए। मैं आजाद पंछी हूं, जब चाहे इस देह रूपी पिंजड़े में बैठ जाऊं और जब चाहे इस पिंजड़े से उड़कर बाबा के पास बैठ जाऊं, मन मना भव का जाप करता रहूं। तो इसके लिए बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते रहें। तो ये मन मना भव का जो मंत्र है, इस मंत्र का इतना महत्व क्यों है? सारे ज्ञान का सार एक ही मंत्र है, मन मना भव। लेकिन इतनी उससे प्राप्ति भी हमें हो रही है। एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कराने वाला और कोई मंत्र है नहीं, लेकिन उसका जाप करने में कभी कभी हमारी रुचि कम होती है। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो वो सोचता है मुझे ये काम करने से क्या मिलेगा। आप यहां आए क्यों आए? मुझे बाबा के घर जाकर ये प्राप्तियां होगी, इसलिए बड़े उमंग से यहां आए और वो प्राप्तियां कर भी रहे हैं। तो मन मना भव के मंत्र में सदा रुचि बरकरार रहे, उसके लिए बीच बीच में मध्याजी भाव के मंत्र का जाप भी करते रहे। इतना बड़ा जो 21 जन्मों की बादशाही का लड्डू बाबा दे रहे हैं, बादशाही इतनी बड़ी जन्मों की दे रहे हैं, उसको जब याद करते हैं तो मन मना भाव का जाप करने में रुचि हमारी सदा बनी रहती है। इस मंत्र को भूले नहीं, मन मना भाव के साथ मध्याजी भाव का भी अर्थात वर्षे को भी हमें याद करते रहना है और उमंग उत्साह के साथ इस मंत्र को जाप करते रहे। तो इस मंत्र का इतना महत्व क्यों है? दुनिया में अगर कोई बहुत शीघ्रता से काम करता है, बहुत जल्दी किसी बात में परिवर्तन लाता है, तो हम कहते हैं आपने तो छू मंत्र कर दिया। ये छू मंत्र कहां से शब्द आया भाई? ये छू मंत्र नहीं है, ये शिव मंत्र है। ये शिव मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में बेहद परिवर्तन आता है। मनुष्य से देवता बनने की जादू गरीब बाबा दिखा रहे हैं, तो इस शिव मंत्र से ही बाबा ये जादूगरी दिखाते हैं। अब बाबा तो सबसे बड़ा जादूगर हैं, अब जादूगर के बच्चे कौन होंगे भाई? हैं जी, मास्टर जादूगर। हमारे द्वारा बाबा बहुत जादू दिखाने वाले हैं, बच्चों के द्वारा बहुत साक्षात्कार कराने वाले हैं। लेकिन जादू कब होगी, जादू का काम कब करेगा हमारा मन? हैं जी, जादू उल्टा क्या है? दूजा। जब हमारे मन में एक बाप होगा, दूजा कोई नहीं होगा, तब हमारा मन जादू का काम करेगा। आपके दृष्टि से तीनों लोगों का साक्षात्कार भक्तों को होगा, बाबा का साक्षात्कार होगा, लेकिन मन में मेरा एक बाप हो, दूजा कोई भी नहीं हो। और ऐसी आत्माओं की ही द्वापार युग से क्या होती है? पूजा होती है। दूजा नहीं होता तो पूजा होती है। इसलिए भक्ति मार्ग में लोग मंत्र का जाप कैसे करते हैं? हाथ में माला लेते हैं और उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं और गुप्त ही गुप्त राम 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 शिव 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 मंत्र का जाप करते रहते हैं। ये किसकी यादगार है? क्यों वो हाथ ढकते हैं कपड़े से? ये हम बच्चों की यादगार हैं। हम बाबा के बच्चों ने गुप्त रीति से मन मना भव का मंत्र का जाप संगम युग में बहुत किया, गुप्त रीति से। आप बैठे हैं, आपका मन जाप कर रहा है, किसी को पता नहीं चलता है, गुप्त ही गुप्त वो जाप चलता रहता है। उसकी यादगार भगत लोग मनाते जाते हैं। इसलिए इसका अजापाजाप हमारा चलता रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। अभी ये जाप और बढ़ता जाए, निरंतर चलता रहे, उसके लिए क्या करें? उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति मुरली में बताई है। बच्चे, याद का चार्ट रखते चलो। याद का चार्ट अर्थात मन मना भव का मंत्र, मेरा मन कितना कर रहा है, इसका हिसाब किताब रखना। याद का चार्ट रखने से आत्मा स्मार्ट बनती है। कैसे बनती है? क्योंकि चार्ट रखने से आत्मा की अटेंशन की पावर बढ़ती जाती है। याद रहना, याद भूलना, ये है क्या, खेल क्या है? केवल अटेंशन और अटेंशन न होने का परिणाम है। तो चार्ट रखने से अटेंशन पावर हमारी बढ़ती जाती है और मन और बुद्धि पर ध्यान बहुत रहता है, मन हमारे डिसिप्लिन में रहता है, मन पर पूर्णतया नियंत्रण और अनुशासन करने की कला हमें प्राप्त होती है। हर घंटे कैसे मन को बिजी रखना है, उसको जब हम कुछ काम देते हैं, कुछ एक्सरसाइज मन की करते हैं, तो कितना मन ने काम किया, कितना नहीं किया, इसका हिसाब किताब हम रखते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, अटेंशन की पावर बढ़ती जाती है और याद हमारी बढ़ती जाती है और योगाभ्यास में हमारी बहुत उन्नति होती जाती है। हम सभी आत्माओं रूपी घोड़े इस आध्यात्मिक रेस में दौड़ रहे हैं। हमारी रेस किस में है? हाँ जी, हमारी रेस किस में है? हमारी रेस योग में है। कितना अच्छा भाषण कर रहे हैं उसमें नहीं है, कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं वो तो करनी है, लेकिन रेस हमारी योग में है। तो योग में हमें विनर बनना है, केवल रनर नहीं बनना है। तो विनर बनने के लिए बहुत अच्छी प्रोग्रेस हमें इसमें करनी होगी। तो जब हम बाबा के साथ रूह रिहान कर रहे हैं, तो समझो आप इस रेस में चल रहे हैं, परिस्था स्थिति की अनुभूति कर रहे हैं, इसका मतलब आप हाई जंप कर रहे हैं। और शक्तिशाली याद अर्थात बीज रूप स्थिति की अनुभूति कर रहे हैं, तो समझो आप उड़ रहे हैं। अभी उड़ने का समय है, उड़ते कला में उड़ते रहने का समय है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है, कौन सा चल रहा है? शक्तिशाली योगाभ्यास करने का, क्योंकि हमें बहुत कुछ काम करने हैं। सिर पर पापों का बोझ है, उसको उतारना है। पिछले जन्मों के विकर्म हैं, उनको खत्म करना है और संस्कारों का परिवर्तन करना है और शक्तियों का स्टॉक भी जमा करना है। ये सब काम तभी होंगे समय पर जब हमारी शक्तिशाली याद होगी। तो चले हम सभी शक्तिशाली याद की अनुभूति की ओर। बहुत सुंदर रीति से मन मना भव का जाप हम अभी करते रहेंगे, तो सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य दीपक में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति ज्वल रही हूँ, जगमग रही हूँ। मोज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों फैल रहा है। मोस आत्म ज्योति के चहु ओर दिव्य प्रकाश का सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का ओरा अनुभव हो रहा है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्म ज्योति हूं, जो स्वयं के सत्य स्वरूप को दिव्य स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं, स्वयं भाग्य विधाता मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते थकते ही नहीं है। मुझे अपने भाग्य पर नाज है, मैं मन मना भव के मंत्र का अजपा जाप करके अनेक पद्मों की कमाई करने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मेरा मन, मन मना भव के जाप का जापा जाप कर रहा है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस चैतन्य देह रूपी दीपक से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझसे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम स्नेह और अद्भुत शक्तियां अनुभव कर रहा हूं, करता ही जा रहा हूं। बाबा की दृष्टि का भरपूर आनंद ले रहा हूं। स फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पुनः दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही ओहो, दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूं। कितना सुंदर है यह प्यारा परम धाम। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति, परम शांति है। मेरे प्राणों के प्राण सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिवबाबुल मस आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य नेत्र से निहार रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मास आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पास लावार में भस्म हो रहे हैं, भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। मन मना भव के मंत्र का जाप कर रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर साकारी दुनिया की ओर वाया सूक्ष्म वतन वापिस आ रही है और पुनः इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में विराजमान हो चुकी हूं। मोसस तेजस्वी आत्म ज्योति से शक्तियों का तेज, शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। इस देह रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्म ज्योति अखंड अखंड जलती ही जा रही हूं। ओम शांति शांति शांति।